आप सभी बाबा के दुलारे बच्चे, बाप की दुआओं में पलने वाले बच्चे, ऐसी महान आत्माएं हैं, महान आत्माओं का लक्ष्य भी सदा महान होता है। तो ऐसी महान आत्माओं का लक्ष्य है ही कि मुझ आत्मा को बाप समान बनना है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ स्थिति, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति बाप समान की स्थिति में ही है। तो बाप समान बनने के लिए तीन विधि है, तीनों में जो विधि सहज लगे आप अपना कर बाप समान बन सकते हैं। पहली विधि है चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेकर पास विद आनर बनकर, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों सब्जेक्ट्स में फुल मार्क्स लेकर पास विद आनर बनकर। दूसरी विधि है बाप के साथ सर्व संबंध जोड़कर सर्व संबंधों से सर्व प्राप्तियां करके समान बनना, संबंधों से सर्व प्राप्तियां करके समान बनना। और तीसरा है दुआओं का खाता जमा करके फुल अर्थात संपूर्ण बनना। तो ये तीन विधि है आत्मा को संपूर्ण बनाने की। तो तीनों में आज स्पष्ट करते हैं कि दुआएं देने और लेने से आत्मा कैसे संपन्न बन सकती है, क्योंकि तीनों में सबसे सहज से सहज काम है दुआ देना और दुआ लेना। पहले टर्न में बाप दादा जो मुरली चलाई, उस मुरली में भी बाबा ने तीन बातों पर जोर दिया था। एक, वायुमंडल वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाओ। दूसरा, बाबा ने कहा था हमेशा हर एक की विशेषता को देखो, विशेषता को वर्णन करो। और तीसरा, बाबा ने कहा था सबको दुआएं दो और दुआएं लो। ये तीन बातें पिछली मुरली में बाबा ने कहा था। तो दुआओं का इतना बड़ा महत्व क्यों है? क्योंकि दुआओं के द्वारा बहुत बड़ी प्राप्तियां हैं। बताया ना कि समान भगवान के बन सकते हैं, लेकिन इतनी प्राप्ति होते हुए भी फिर भी सदा दिल से दुआ नहीं निकलती है या दूसरे से दुआ नहीं ले पाते हैं, इसका कारण क्या है? तो मेरे समझ से इसका कारण दो है। एक कि दुआ देने और लेने से फायदा क्या क्या है, वो फायदा सदा बुद्धि में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि फायदा अर्थात लाभ पुरुषार्थ स्वतः कराता है, करना नहीं पड़ता है, अपने आप कराता है। जैसे देखो, आप लोग अनुभवी होंगे, मान लो आप कर्म क्षेत्र पर थे, कोई बिजनेस कर रहे थे, कोई भी काम कर रहे थे, मान लो आप अपनी दुकान बंद कर रहे थे, सारा दिन काम किया, बहुत थक गए थे, अब घर ही याद आ रहा था वापस चलेंगे, इतने में कोई ग्राहक आ जाए जो ढेर सारा सामान खरीदने वाला हो, तो बोलो आपकी थकावट खत्म हो जाएगी या नहीं? क्यों? क्योंकि प्राप्ति पुरुषार्थ स्वतः कराती है। तो बाबा के द्वारा जो विधि बताई गई, उस विधि प्रमाण दुआएं देने और लेने से जो प्राप्तियां हैं, वो अगर प्राप्ति बुद्धि में क्लियर हो तो स्वतः ही पुरुषार्थ चलता रहेगा। तो एक कारण है प्राप्ति बुद्धि में क्लियर नहीं है, दूसरा कारण है कि हमें दुआएं किस प्रकार से देनी है, किसको देनी है, वो समझ में नहीं आ रहा है। बस समझते हैं योग का दान दे देना, शुभ भावना रख लेना योग का दान है। तो योग का दान कैसे देना है, दुआएं कैसे देनी है, दुआएं कैसे लेनी है और किसको किसको देनी है, किससे लेनी है, ये अगर क्लियर हो तो आपका दुआओं का देना और लेना चल सकता है। तो आपको पहले बताते हैं कि दुआएं देने और लेने से क्या क्या फायदा है। पहला फायदा, अगर आप दुआ देते और लेते हैं तो आपका हिसाब किताब खत्म होता जाएगा। दूसरी बात, आपका पुरुषार्थ सहज आगे बढ़ने लगेगा। तीसरी बात, ब्राह्मण आत्माओं के दिल का स्नेह प्राप्त होगा। चौथी बात, बाप से आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके बाद आपकी मूर्ति से, जड़ मूर्ति से लोगों को, भक्तों को आशीर्वाद की अनुभूति होगी। इसके बाद आपके पुरुषार्थ में एक्स्ट्रा मार्क्स की एडिशन हो जाएगी। इसके बाद आपके द्वारा जितना आपस के हिसाब किताब हैं वो सब चुकतू होते जाएंगे। बाबा ने तो यहां तक कहा था कि ये बहुत तीखा रैकेट है जो एक सेकंड में कहीं से कहीं तक पहुंचकर अपना काम कर सकता है। अभी सुना भी गीत में आपने कि दुआएं देने से क्या क्या फायदा है। तो जब इतने फायदे हैं, अगर इनको स्मृति में रखो तो पुरुषार्थ स्वतः चलता रहेगा। दूसरी बात, दुआ किसको देनी है और किस प्रकार से देनी है वो आपको आज क्लियर करते हैं। पहली बात है, बाबा को शुक्रिया अदा करना है और बाबा से दुआ लेनी है। बाबा को शुक्रिया अदा करनी है और बाबा से दुआ लेनी है। दूसरा, स्वयं को दुआ देनी है और स्वयं से दुआ लेनी है। तीसरी बात, ब्राह्मण आत्माओं को दुआ देनी है और ब्राह्मण आत्माओं से दुआ लेनी है। चौथी बात, प्रकृति को दुआ देनी है और प्रकृति से दुआ लेनी है। पांचवी बात, अन्य सभी जो भी आत्माएं हैं, अज्ञानी आत्माएं, उन सब से दुआ लेनी है और उनको दुआ देनी है। तो जो आत्मा इन पांचों को दुआ देती है और उनसे ले सकती है, वो आत्मा बाप समान अवश्य बन जाती है। तो एक एक क्लियर करते हैं। पहली बात है, बाप को शुक्रिया अदा करनी है। अब आपके दिल से सदा बाबा के लिए शुक्रिया कब निकलेगा, कब निकलेगा? सदा आपके दिल से ऑटोमेटिक बाबा के लिए शुक्रिया निकलती रहे, तब जब आपको ये स्मृति रहेगी कि हमको बाबा ने क्या से क्या बना दिया है, बाबा ने हमको कितना महान बना दिया है। होता क्या है, हम आप सब ब्राह्मण आत्माएं, आत्मा शिव बाबा की संतान है, अति महान है, उससे महान संसार में कोई है ही नहीं, इतनी महान है। लेकिन शरीर साधारण होने के कारण और आत्मा इस साधारण शरीर में बैठी हुई है, आत्मा को शरीर का भान ज्यादा रहता है, इसलिए आत्मा अपने को महान समझ नहीं पाती। जो लौकिक रूप से मैं सास हूं, बहू हूं, या पति हूं, बिजनेसमैन हूं, डॉक्टर हूं, जो भी पद है वो स्मृति में रहता है, और ये स्मृति में रहने के कारण मैं आत्मा इतनी श्रेष्ठ हूं, उस श्रेष्ठता की अनुभूति नहीं होती है। और श्रेष्ठता की अनुभूति न होने के कारण दिल से सदा भगवान के लिए शुक्रिया नहीं निकलता है। आप जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन इतने महान हो प्रेजेंट में जितना संसार में कोई भी महान है ही नहीं। देखो, दुनिया में चार को महान बताया गया है। पहली बात राजा, दूसरी बात साइंटिस्ट, तीसरी बात विद्वान, और चौथी बात धनवान या पद। ये चार को महान बताया गया है। आप देखो चारों में पहली बात है राजा। अगर आपको कोई कहे कि आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओ या राष्ट्रपति बन जाओ और ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी जीवन छोड़ दो, तो छोड़ोगे? नहीं ना? तो राष्ट्रपति से बड़े हुए या नहीं हुए, बोलो। प्रैक्टिकल बड़े हो, सिर्फ स्मृति नहीं है बाकी इतने महान हो। आप सन्यासी को लोग बड़ा समझते हैं, इस ज्ञान के पहले आपके घर में कोई साधारण सन्यासी भी आ जाता तो भी आप उसका चरण धुलाई करते, यथाशक्ति जो करते करते। अब अगर साधारण सन्यासी क्या, अगर शंकराचार्य ही आ जाए तो क्या पांव धुलाई करोगे? करोगे? तो बड़े हुए या नहीं हुए, सोचो कितने बड़े हो। साइंटिस्ट को देखो, साइंटिस्ट 5 तत्वों की खोज कर सकता है। सूर्य चांद सितारा गण से आगे वो नहीं जा सकता है। उनकी सारी खोज 5 तत्वों तक। साइंटिस्ट को देखो, उनका खोज 5 तत्वों तक है, वहां लास्ट है। और आपकी पढ़ाई कहां से शुरू होती है? 5 तत्वों से पार की, जहां साइंटिस्ट स्वप्न में भी नहीं जा सकते, वहां से आपकी पढ़ाई शुरू होती है। पहली पढ़ाई क्या? मैं आत्मा हूं, 5 तत्वों से न्यारी हूं। मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूं, जहां आप 1 सेकंड में पहुंचते हैं। और साइंस टिस्ट तो स्वप्न तक भी नहीं पहुंच सकते हैं, परम धाम क्या होता है जानते ही नहीं। तो प्रैक्टिकल साइंटिस्ट से भी कितने बड़े हो, तो आप देखो, आपसे बड़ा कोई दुनिया में है? ये तो चलो चैतन्य मनुष्यों की बात है, अभी आप मंदिर में जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, पहले आप क्या करते, कहीं भी देखते तो आपका मस्तक झुक जाता। अब झुकेगा नहीं ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं यही बन रही हूं, मेरी तो मूर्ति है, तो उस मूर्ति से भी बड़े हो या नहीं? तो बोलो, आपसे बड़ा इस संसार में कोई है? नहीं ना? तो कितना फखुर होना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए, वाह बाबा आपने मुझे क्या बना दिया, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सदा ऐसे दिल से बाबा के लिए शुक्रिया निकलता रहे। दूसरी बात, बाप से आशीर्वाद लेनी है। जिस आत्मा ने भगवान से आशीर्वाद ले लिया उसका तो बेड़ा पार है। बाबा तो वैसे रोज मुरली में वरदान देता है, आशीर्वाद रोज देता है, लेकिन हमको मिलता है जैसे देखो आप हैं, आप अपने माँ बाप के चरण छुओ, बड़ों के चरण छुओ, वो आशीर्वाद देंगे, जरूर देंगे। लेकिन एक है माँ बाप के आज्ञाकारी बन करके उनका चरण छुओ, और एक है सिर्फ दिखावा मात्र चरण छुओ। अंतर है या नहीं है? है अंतर या नहीं है? अगर आप आज्ञाकारी बन करके चरण छुएंगे तो उनके दिल की आशीर्वाद निकलेगी, और अगर ऐसे ही चरण छुएंगे तो मुंह से शब्द निकलेगा खुश रहो या जो कुछ भी है, दिल से नहीं निकलेगा। और जो दिल से नहीं निकलेगा वो लगेगा नहीं, जो दिल से निकलता है वो लग जाता है, वो दुआ काम करती है, वो आशीर्वाद काम करता है। ऐसे तो आप जिसको भी कहो प्रणाम वो भी कह देगा प्रणाम, किसी को भी कहो चरण स्पर्श करो वो आशीर्वाद दे देगा, लेकिन वो लगता नहीं है। लगती सिर्फ दिल की दुआ है। दिल की दुआ तब लगेगी जब उसके दिल को जीता हुआ होगा तब, और दिल को जीतने का साधन है क्या है? क्या है किसी के दिल को जीतने का साधन? बहुत सहज है, वो है किसी का आज्ञाकारी बन जाना। आज्ञाकारी बन जाना, आज्ञाकारी बन जाओ तो उसके दिल को जीत लोगे। उदाहरण के रूप से मान लो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, कुछ भी है, और किसी को आप कहते हो भैया ये ले जाओ थोड़ा दवाई हमको लाकर दे दो, और वो उसी समय दौड़ के जाता है आपके लिए दवाई लाकर दे देता है, तो आपकी उसके प्रति दिल से दुआ निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी ना। क्यों निकली? क्योंकि आज्ञाकारी बना। और वही वो आप कहते भैया थोड़ी दवा लाकर दे दो, वो उस दिन लाकर नहीं दे, दूसरे दिन ज्यादा दवाई ला करके दे दे, तो भी क्या दिल से दुआ निकलेगी? नहीं। तो आज्ञाकारी बनने से दिल की दुआएं मिलती है। तो जितना आप बाबा के आज्ञाकारी बनते जाएंगे उतना बाबा की दुआएं आपको मिलती जाएंगी। आज्ञाकारी बनना अर्थात रोज बाबा की मुरली से, मुरली तो सुनते चाहे साकार चाहे अव्यक्त, रोज बाबा की मुरली से एक पॉइंट ले लेना और उस एक पॉइंट को सारा दिन मनन चिंतन करते प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना। अगर आप एक दिन किसी एक पॉइंट पर इस चीज को सोचना, अगर एक पॉइंट किसी एक पॉइंट पर सारा दिन आप मनन चिंतन करो, प्रैक्टिस करो जीवन में लाने की, तो जिस पर 8-10 घंटा अटेंशन जाएगा, क्या वो पॉइंट आपके स्वरूप में आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी ना। तो ऐसे अगर एक दिन में एक पॉइंट स्वरूप में आई तो 30 दिन में 30 पॉइंट आ जाएगी। संपूर्ण बनने में देरी लगेगी, बहुत जल्दी बन जाएंगे, लेकिन हम ये कर नहीं रहे। इसलिए हमको ना बाप की आशीर्वाद मिल रही है, ना आत्मा संपूर्ण के नजदीक जा रही है। इसी कारण से अभी हमारी दूरी बनी हुई है। तो हमें पुरुषार्थ विशेष करना है, बाप के आज्ञाकारी बने, बाप का आशीर्वाद ले ले, बाप का आशीर्वाद दुआ असंभव को संभव कर देगा। जिस चीज को आप असंभव समझते हो, चाहे शारीरिक बीमारी है, चाहे कोई घर में समस्या है, चाहे परेशानी है, कुछ भी है, जिसको आप असंभव समझते हो, वो बाप का आशीर्वाद सेकंड में सब क्लियर कर देगा। भगवान को कुछ करने में देरी नहीं लगती, क्योंकि भगवान 3 तरह से मदद देता है, गुप्त है मदद, 3 तरह से देता है। पहली बात, भगवान आपको टच करता है, आपकी बुद्धि को टच करता है, बच्चे ऐसे करो। जब कोई टच नहीं उसको कैच कर पाता है और भगवान के आज्ञाकारी हो, तो दूसरे प्रकार से मदद भगवान स्वयं प्रवेश हो जाता है और आपके द्वारा वो काम करा लेता है स्वयं प्रवेश होकर। और तीसरी बात, कहीं प्रवेश नहीं होता है क्योंकि भगवान उसी शरीर में प्रवेश करेगा जिसको भगवान योग्य समझेगा। अगर हमारा शरीर योग्य नहीं है, ये स्थान पवित्र नहीं है, तो भगवान प्रवेश तो नहीं करेगा, लेकिन आज्ञाकारी बने हो तो भगवान किसी के द्वारा मदद दिला देगा, ये गारंटी। एक आपको सत्य घटना सुनाता हूं, है विश्वास करने वाली नहीं लेकिन सत्य घटना है, बॉम्बे की बात है। एक बार एक बहन ज्ञान में चली ही थी लेकिन उसके रिलेटिव बीमार पड़े, वो हॉस्पिटल में बॉम्बे में लाई, तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने कहा इसके ब्रेन में 16 ट्यूमर हैं, ब्रेन में इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है। उस टीचर बहन ने नया नया ही कोर्स किया था, टीचर से पूछा ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं क्या करूं, तो टीचर ने कहा बोलो ऑपरेशन करें, मरना होगा मरेंगे, जीना होगा जिएंगे। तो ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सक्सेस हो गया, लेकिन कुछ दिन के बाद इतना जोर का इन्फेक्शन आया कि वो इन्फेक्शन ठीक हो ही नहीं रहा था। बहुत पुरुषार्थ किया डॉक्टर ने, नहीं ठीक हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा अब ये सिर्फ 2 दिन के मेहमान हैं, इनको चाहे तो घर ले जाओ चाहे तो यहां रखो, जिसको बुलाना हो बुला लो, देख ले सब। वो सब कुछ किया। फिर उस बहन ने टीचर से पूछा क्या करूं, तो टीचर ने कहा उनको हॉस्पिटल में ही रहने दो, आप भी वहां योग करो, हम भी सेंटर पर योग करते हैं। तो दोनों जगह योग चल रहा था। वो बहन तो नई थी, क्या योग किया होगा, लेकिन फिर भी यथाशक्ति तो किया होगा। रात का 2 बजा था, डॉक्टर आता है, नर्स कंपाउंडर तो सो जाते हैं, वो तो दवाई वाई देकर सो जाते हैं, टाइम टाइम पर दवा देते हैं। वो बहन बैठी हुई थी, तो जब डॉक्टर आता है तो जो पेशेंट जहां जिस बिस्तर पर रहते हैं उस पर दवाइयों की लिस्ट लगी रहती, क्या क्या देना है, प्लेट रहता लिखा रहता है, वो पढ़ करके फिर एक चिट्ठी लिख कर देता है बहन को कि जाओ ये फार्मेसी से दवाई ले आओ। वो बहन जाती है, दवाई लेकर आती है, एक ही खुराक था, डॉक्टर अपने सामने खिला करके डॉक्टर चला जाता है। और उसके बाद सुबह जब डॉक्टर आता है जिसने ऑपरेशन किया था, बोला था 2 दिन के मेहमान हैं, तो वो तो सोचा था कि ये तो मर गया होगा। और जब पहुंचा वहां देखा तो 75% इन्फेक्शन खत्म हो चुका था। डॉक्टर को बड़ा वो हुआ, आखिरकार हुआ क्या, कैसे, तो पूछने लगा नर्स कंपाउंडर से, पूछा क्या दवाई दी है? बोला हमने तो कुछ नहीं सर, जो लिखा है वही दिया। उस बहन से पूछा कुछ दिया है क्या? बोला हाँ। बोला क्या दिया है? बोला सर जो आपने दवाई लिख करके दिया था। तो बोला चिटकी कहाँ है? बोला चिटकी तो आप ही लेकर चले गए हो। अब ये डॉक्टर तो आया नहीं, बोलो कौन आया? सोचो, ये सत्य घटना है। और वो भाई जिसका ऑपरेशन हुआ पिछले साल आके बाबा से मिलके गया। तो बाबा कैसे भी करके बाबा के आज्ञाकारी बनो तो बाप का आशीर्वाद आपको हर रूप से मदद देगा। दूसरी बात है स्वयं को दुआ देना और स्वयं से दुआ लेना। स्वयं में दो चीज है, एक आत्मा है, दूसरा शरीर है। आत्मा को दुआ देना और आत्मा से दुआ लेना है। तो आत्मा से दुआ देने की विधि है, एक है आत्मा को दुआ लेनी है, एक है आत्मा को दुआ देनी है। तो आत्मा को दुआ लेने की विधि है, जितना जितना आप श्रीमत मर्यादाओं पर चलते रहेंगे, संकल्प वाणी कर्म से जितना चलते रहेंगे उतना आत्मा की चढ़ती कला होती जाएगी। ये है आत्मा को दुआ लेना, ये है दुआ लेना। अगर संकल्प मात्र भी आप ईश्वरीय नियम मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ तो आत्मा की गिरती कला हो जाएगी। ये है आत्मा को बद दुआ देना। दुआ लेने की विधि है श्रीमत नियम मर्यादाएं प्रमाण चलाना। और दूसरी बात है आत्मा को दुआ देना। दुआ देना अर्थात अभी तक बाबा ने मुझ आत्मा को कितना महान बना दिया है वो स्मृति में लाकर सदा अंदर से ये संकल्प उत्पन्न होता रहे, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह रे मैं वाह, वाह मेरा पार्ट वाह। तो जितना दिल से अपने लिए वाह वाह निकलता है इसको कहा जाता है आत्मा को दुआ देना। तो आत्मा को दुआ देना है और आत्मा से दुआ लेनी है। दूसरा है ये शरीर, इस शरीर को दुआ देनी है, इस शरीर से दुआ लेनी है। मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माएं, तो ध्यान से सुनना है, मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माएं इस शरीर को बद्दुआ बहुत देती, अपने ही शरीर को बद्दुआ देती। किस प्रकार से? मैं बुढ़ी हो गई तब ज्ञान में आई, इतना बीमार रहती हूँ, ज्ञान में आते बीमार रहना शुरू कर दिया है। पहले इससे अच्छा था, बाबा ने मुझे पहले ज्ञान में क्यों नहीं बुलाया, अब बुलाया है जब शरीर भी साथ नहीं देता है। मैं इतना गरीब घर में पैदा हुई जो हम बाबा के यज्ञ में भी नहीं कर सकते हैं, ये है बद्दुआ देना। ब्राह्मणों के एक एक संकल्प सिद्ध होते हैं, इसलिए कभी भी ऐसा संकल्प नहीं करना। आप सोचो ये शरीर कैसा भी है, गरीब है कैसा भी है, लेकिन इसी शरीर के द्वारा आपको भगवान प्राप्त हुआ है। सोचो इस शरीर को कैसा भी है, इसलिए सदा इस शरीर की महिमा करो। जितना इस शरीर की महिमा करोगे उतना ये शरीर आपको मदद देगा। जैसे बाबा उदाहरण देकर बताया था कि जो घोड़ा रथ को खींचता है या सिर्फ घोड़े पर ही बैठे हो, अगर बार बार उसे चाबुक मारते रहो तो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद आपको तंग करना शुरू कर देगा। और अगर आप घोड़े को उसका पीठ सहलाओ, प्यार दो स्नेह दो, ऐसे थप थप करते रहो, तो जब तक उसके शरीर में दम है आपको सहयोग देता रहेगा, है या नहीं है। तो ऐसे आपका ये शरीर है। बाबा ने कहा इस शरीर के एक एक अंग की महिमा करो। देखो आपकी ये आंख है, अभी चश्मे वाली आंख है, कम दिखाई पड़ता है, लेकिन आप सोचो इस चश्मे वाली आंख का कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि इस चश्मे वाली आंख ने बाबा का घर देखा, इस चश्मे वाली आंख ने भगवान के रथ को देखा, इस चश्मे वाली आंख ने भगवान को खाते हुए देखा, भगवान को चलते हुए देखा। वाह मेरे चश्मे वाली आंख, वाह कितना श्रेष्ठ भाग्य है। सोचो आपका पैर है, घुटने नहीं चल रहे हैं, लेकिन घुटने नहीं चल रहे हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं, लेकिन इस ना चलने वाले घुटने के पैर का कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि मधुबन महातीर्थ में ये पैर आपको ले आया। जिस तीर्थ स्थान पर पहुंचते ही आपके आधा पाप धुल गए, तो कितना श्रेष्ठ भाग इस पैर का है। कान कम सुनाई पड़ता है, लेकिन इस कम सुनाई पड़ने वाले का भाग्य देखो कि ये भाग्य कि भगवान के महावाक्य को डायरेक्ट सुनता है, कितना श्रेष्ठ भाग्य है। जब सब कुछ अच्छा था तब तो पता नहीं क्या कबाड़ खाना देखते थे सुनते थे, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है। एक एक अंग का देखो। तो हमेशा सदा यही करते रहो, वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह भगवान मिल गया, भगवान मिल गया। देखो कैसे शरीर साथ देता है, उमंग आ जाएगा। और भगवान के प्रति आपका प्यार बढ़ने लगेगा, भगवान के प्रति आपकी भावना बढ़ने लगेगी, तो बाप का भी मदद मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सदा आप इस शरीर को बहुत महान दृष्टि से देखो, इसको दुआ देना अर्थात सदा वाह वाह करते रहना, और इस शरीर से दुआ लेना अर्थात इस शरीर के द्वारा यज्ञ की कर्मणा सेवा अवश्य करना। भाई लोग थोड़ा देह अभिमान में आ जाते हैं जो बड़े पोस्ट वाले हैं कि हम कैसे झाड़ू पोछा लगाएंगे, अगर अभी नहीं लगाओगे तो सतयुग में फिर लगाना पड़ेगा, छूटोगे तो है नहीं। इसलिए अभी बाबा के घर में लगा लो, आप करके देखो, अगर आपको थोड़ा बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, आप सेंटर पर आ करके सेवा करके देखो आपकी तबीयत ठीक हो जाती या नहीं, अनुभव होगा सबको, यज्ञ की सेवा का बल मिलता है, तबीयत ठीक हो जाती है। इसलिए इस शरीर से कर्मणा सेवा करना अर्थात शरीर से दुआ लेना और शरीर को सदा वाह वाह करना अर्थात शरीर को दुआ देना है। अच्छा, ओम शांति। Thank you.